जब हम लोग कोई कारोबार करते हैं तो हम एक सोसाइटी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं और उससे एक प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और गवर्नमेंट उस प्रॉफिट के ऊपर जो है वो एक टैक्स अपना हिस्सा रखती है, जिस टैक्स से वो जो एजुकेशन या हेल्थ या इस तरह की मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ देती है जो लोग डिज़र्व करते हैं। अब दूसरी तरफ जो टैक्स पेयर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि चूंकि जो मैं टैक्स पे करता हूँ उसको गवर्नमेंट सही तरह इस्तेमाल नहीं करती, उसमें मिसमैनेजमेंट है, उसमें करप्शन है, हर तरह के जो इशूज़ हैं, इस वजह से शायद मैं हक बजानिब हूँ कि मैं अगर टैक्स नहीं भी पे करूँ तो शायद मैं राइटफुली सही सोचता हूँ। और उसमें सुनने में आया कि बहुत से लोगों ने इस पर फतवे भी लिए हुए। अब जो मेरे टैक्स ना पे करने की वजह से गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं दे सकी, और मिसाल के तौर पे राजनपुर के किसी दूर दराज गाँव में कोई बच्चा फौत होता है इस वजह से कि वहाँ पे हस्पताल में दवाइयों के पैसे नहीं थे, तो क्या गवर्नमेंट के साथ साथ मैं भी जिम्मेदार रहूँगा उस चीज़ का कि मैंने अपना भी हक अदा नहीं किया था जो मुझे करना चाहिए था?
एक तो आपके सवाल का उसूली जवाब है, और वो ये कि जो आदमी भी कोई गलत काम करता है उस गलत काम के नतायज बाज़ औक़ात सैकड़ों इंसानों तक पहुँचते हैं, बाज़ औक़ात अगली नस्लों तक पे जाते हैं, तो वो क्यों उस जुर्म में शरीक नहीं होगा? इस चीज़ को खुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में वाज़े किया कि जो शख्स कोई अच्छी सुन्नत कायम करता है तो उसके अजर की तवक्को कर सकता है। सदका जारिया किस चीज़ को कहा जाता है? इसी चीज़ का नाम है ना, कि आपने एक नेकी और खैर का काम किया है, उसका फैज़ पहुँच रहा है, आज भी पहुँच रहा है, आपके बाद भी पहुँच रहा है। अगर आपने कोई बुरी सुन्नत कायम की, बुरा तरीका कायम किया है, तो जाहिर है कि उसकी जिम्मेदारी में भी आप शरीक हैं। चुनाचे ये बताया जाता है और ये बात समझ में आती है कि कोई कत्ल ज़मीन पर नहीं होता मगर ये कि उसमें काबील का हिस्सा भी होता, इसलिए कि उसने सबसे पहले हाबील के खिलाफ ये ज़ालिमाना एक काम किया था। तो आपकी ये बात उसूल में बिल्कुल दुरुस्त, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ एक दूसरी चीज़ जो है उसको भी देखना चाहिए, और वो चीज़ ये है कि हमारे यहाँ आखिर इस पर क्यों गौर नहीं किया जाता कि टैक्सेशन के बारे में जो हिदायत अल्लाह ने दी है उसकी पैरवी की जाए। जब आप उस हिदायत की पैरवी करेंगे तो आप एक तो हुकूमत की ताकत है, एक अखलाकी मुकदमा है, आप एक तीसरी कुव्वत भी मैदान में ले आएंगे, और वो क्या है? वो ये कि एक इंसान का ये शऊर कि मेरे परवरदिगार ने यह हिस्सा मुकर्रर कर दिया। मैं जब ये कहता हूँ कि टैक्स के मामले में अल्लाह ने फैसला सुना दिया है, तो ये देखिए ये कितनी बड़ी रहमत है जो इंसानियत पर हुई है। आज के ज़माने में इस्तिब्दादी हुकूमतों के बेशुमार कवानीन हैं जो अब किस्सा माजी हो चुके हैं। कौमों पर हमला करना, मुल्कों पर कब्जा कर लेना, यानी ये नहीं कि ये मामले अब ख़त्म हो गए हैं, लेकिन बहरहाल अब इनके लिए कोई बहाना करना पड़ता है। ये अब उस तरह की चीज़ नहीं रही है कि आप चढ़ दौड़ें और आप ये कहें कि हमारा कब्जा हो गया है तो हम इस सल्तनत के अब मालिक हैं और जायज़ मालिक हैं। तो जायज़ नाजायज़ की बहसें वहाँ पैदा हो चुकी हुई हैं, लेकिन टैक्सेशन आज भी मसला है। क्यों? इसलिए कि जब आप कोई नज़म इज्तिमाई कायम करेंगे तो उसमें नागुज़ीर तौर पर अखराजात होंगे, जिम्मेदारियाँ होंगी, उनको पूरा करने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। उसके लिए कंट्रीब्यूट किसने करना है? लोगों ने करना है, यानी हुकूमत उनकी बहबूद के लिए, उनको अमन फराहम करने के लिए कायम की जाती है। ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए, इसमें तो इल्म अकल की रोशनी में एक ही जवाब है कि जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो चार आदमियों के माबैन भी कोई इज्तिमाई नज्म आप कायम करें तो वह नहीं चल सकता। माल पर दुनिया का इन्हिसार है, होना तो चाहिए लेकिन कितना होना चाहिए? असल में ये वो जगह है जहां जब इस्तिब्दाद मुदाखलत करता है, पार्लियामेंटें मुदाखलत करती हैं, हुकूमती मसाले मुदाखलत करते हैं, हमारी प्लानिंग मुदाखलत करती है, तो जुल्म वजूद में आता है। ये इसी का नतीजा है कि फिर वर्जन आईलैंड और पनामा और फना पैदा होना शुरू हो जाता है। इसी का नतीजा है कि आपका टैक्स नेटवर्क ये बढ़ने पाता ही नहीं, यानी करोड़ों की आबादी होती है और देखें कितने लोग टैक्स दे रहे हैं, चंद लाख भी नहीं होते, ये उसका नतीजा निकलता है। तो अगर आप इस मामले में इस फैसले को मान लें कि इस आलम के परवरदिगार ने एक फैसला किया है और ये बताया है कि आप रेवेन्यू के लिए, आप रियासत का नज़म चलाने के लिए ये मददात हैं जिनसे वसूल कर सकते हैं, इसकी ये शरें हैं जो मैंने मुकर्रर कर दी हैं, तो आप ये देखेंगे कि उसमें आपका जो टैक्स नेट है वो इतना वसी हो जाएगा कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या होगी? सिर्फ हुकूमत की ताकत और एक अखलाकी मुकदमा नहीं बल्कि अल्लाह ताला की ताकत पीछे आ जाएगी, यानी फिर बड़े थोड़े लोग होंगे कि जो वो सरकशी इख्तियार करेंगे कि नहीं खुदा भी कहता है तो हम इसको देने के लिए तैयार नहीं है। تو میری گزارش یہ ہے کہ اس پر بھی ہماری حکومتوں کو، ہمارے وزرائے خزانہ کو، ہمارے دانشوروں کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی رحمت کی کہ جس کے نتیجے میں حکومت کے بھی ہاتھ باندھ دیے اور راستہ بھی بتا دیا کہ جس میں آپ صحیح انصاف کے ساتھ یہ کام کریں. اور پھر یہ تو پہلو ہے کہ آپ نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے، اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ سب سے بڑا فائدہ معیشت کو حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ معیشت کو وہ استحکام نصیب ہو جاتا ہے. دیکھیے، معیشت کا مسئلہ پیدا ہی دو جگہوں سے ہوتا ہے، حکومت کی معاشی پالیسیاں. وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ ہمیشہ اسی طرح ٹیرف سے اور ٹیکس سے اور اس کی شرحوں سے چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. یہ ایک ٹرائل اور ایرر کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں ایک پالیسی بعض اوقات ایک صورتحال کو درست کرتی ہے اور وہی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تو اس سے نجات ہو گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کر دیا. تو ایک پہلو یہ. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ سیاسی استحکام. تو سیاسی استحکام کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ سرمایہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو. بین یہی صورتحال معاشی استحکام میں بھی ہوتی ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ معیشت میں بہت بہتری آ جاتی ہے اور وہ ایک سٹیبل جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن یہ طوطی کی آواز ہے اور کون سنتا ہے، نہ کارخانے.